بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لله ما في السماوات وما في الأرض، الله ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے. اللہ پاک، اللہ کے خزانے بے شمار، اللہ بہت بڑے. ساری مخلوق اللہ کے سامنے ایسی عاجز ہے، بے بس ہے جیسے کہ اینٹ اور پتھر. دنیا کے سارے اسباب، رحمتیں، برکتیں، ان کے خزانے اللہ کے قبضے میں. ساری مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر، اور سارے مسائل کا حل اللہ کے دربار میں. جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، جو آدمی کے حواس خمسہ فائیو سینسز بتا رہے ہیں، یہ سب عارضی ہے اور ختم ہونے والا ہے. اور جو نہیں دکھائی دے رہا، وہ پرماننٹ ہے اور ہمیشہ کے لیے آنے والا ہے. اللہ پاک دنیا میں، اس مختصر زندگی میں، دکھاتے ہیں چیزوں میں اور اسباب میں، تو آدمی للچاتا ہے چیزوں کی طرف، لیکن اصل میں اللہ نے رکھا ہے عملوں میں، ایمان اور عمل صالح میں. جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی مثال بتائی گئی کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کوئی اختیار اور کوئی پاور نہیں رکھتے. اور ساری انسانیت مل کر جمع ہو جائے تو سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. اور اگر بنانا تو کیا، اگر مکھی کوئی چیز چرا کر لے جائے تو سارے کے سارے مل کر اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. اللہ پاک کی قدرت، اللہ کی نشانیاں، اللہ پاک طرح طرح سے متوجہ فرماتے ہیں، بندے کو بتاتے ہیں، دیکھو آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑو. آدمی اپنے بدن پر غور کرے، اپنے جسم پر، سر سے لے کے پیر تک. وفی انفسکم افلا تبصرون. اللہ نے سر سے پیر تک ایک ایک آرگن، ایک ایک عضو کو بہترین خلقت پر بنایا، اور ہر ایک چیز لاکھوں کروڑوں کی لگا کر دی. آدمی کی آنکھیں کئی لاکھ رنگوں کی پہچان کر سکتی ہیں. دنیا کا کوئی کمپیوٹر اور کوئی دوربین، ٹیلیسکوپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آنکھیں آدمی کی خوبصورتی ہیں. آنکھ سے دیکھنا ایک الگ نعمت ہے، پلک جھپکنا ایک الگ اور نعمت ہے، اور رنگوں کو پہچاننا ایک اور نعمت ہے. کتنے لوگ دنیا میں آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں، دنیا کی کوئی خوشی، کوئی رنگ انہوں نے دیکھا نہیں. اللہ پاک جنت میں ایسی آنکھیں دیں گے مومنین کو، جہاں چاہو دیکھ لو، بہت تیز آنکھیں دیں گے. آدمی کے کان لاکھوں آوازوں میں پہچان کر لیتے ہیں، میرا بھائی بول رہا ہے، لاکھوں لوگوں میں پہچان لیتے ہیں. ایک ایک دانت بہت بڑی نعمت ہے. زبان کا ہزاروں کو ذائقے چکھ لینا، ایک ایک ذائقہ، ایک ایک ٹیسٹ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آدمی کا دل پیدائش کے وقت سے، اس سے پہلے سے دھڑک رہا ہے روزانہ ایک لاکھ مرتبہ، ہارٹ بیٹ. اور ایک اوسط زندگی میں 2.5 بلین ٹائم. اگر تھوڑی دیر کو دل کا دھڑکنا رک جائے، آدمی ختم. کھانا ہضم ہونا ایک الگ نعمت ہے. خون کا رگوں میں دوڑنا ایک الگ نعمت ہے. دماغ، عقل، اچھی سوچ، بولنا، دیکھنا، لکھنا، پڑھنا، ریسرچ کرنا، یہ ایک الگ نعمت ہے. ہر سانس کا آنا جانا ایک الگ نعمت ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر سانس پر، اور ہر پلک جھپکنے پر، اور ہر بار دل دھڑکنے پر آدمی کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد لک شکر، اللہم لک الحمد لک شکر. ایک بزرگ کے پاس آدمی آ گیا اور اپنی غربت کی شکایت کی، میرے پاس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا، دیکھو تمہیں منظور ہے کہ تمہاری آنکھیں لے لی جائیں، تم کو 40,000 دے دیا جائے؟ نے کہا نہیں، یہ منظور نہیں ہے. انہوں نے کہا، تمہیں منظور ہے تمہارے ہاتھ پاؤں لے لیے جائیں، 20,000 اور دے دیے جائیں؟ اس طرح ساری چیزیں اس کو یاد دلائیں. پھر کہا کہ تم لاکھوں کے مالک ہو، چلتے پھرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں اللہ سے شکایت کرتے؟ ہم اپنے گھر پر اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالیں، آرام دہ، ہوادار، گرمی، سردی، بارش، فتنے سے بچاؤ، بچوں کا کھیلنا کودنا، آرام، سکون. اللہم لک الحمد ولک شکر. अपने खाने और दस्तरखान पर नजर डालिए, पानी का एक गिलास हमारे तक लाने में अल्लाह ने कायनात की कितनी कुव्वतों को काम पे लगा रखा है। इसी तरह रोटी का एक टुकड़ा हमारे प्लेट पर आने में अल्लाह ने सैकड़ों लोगों को उस पर काम में लगा रखा है। फिर हमारे पास अल्लाह ने कितनी नेमतें अता फरमाई, सवारी पर नजर डालिए, घंटों का फासला मिनटों में तय कर लेते। सर से लेके पैर तक नेमतें बरस रही हैं और अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें। सर्दियों में बर्फ पड़ती है, कौन सी बर्फ पर किस आदमी के जूते के निशान पड़ेंगे अल्लाह के इल्म में है। कौन सा आदमी अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ चलकर जाएगा, उसके नक्शे कदम कहाँ कहाँ पड़ेंगे, ये भी अल्लाह के इल्म में है। रोजाना जितनी बारिश जमीन पर होती है, बादलों से जितने कतरे गिरते हैं जमीन पर, उतनी ही तादाद में कतरे बुखारात की शक्ल में उड़कर वापस बादल को चले जाते। एक कतरा भी गुम नहीं होता। कहीं बर्फ गिरी तो मीलों तक सफेद चादर बिछ जाती। अब किसकी मजाल है कि पूरी सफाई करे। फिर अल्लाह पाक बारिश भेजते हैं और सूरज निकालते हैं, सारी बर्फ खत्म। अल्लाह के खजाने में और अल्लाह की ताकत, सुबह शाम अल्लाह उसकी मिसालें दिखाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, लहू मकालीदुस समावाति वल अर्ब, जमीन आसमान की सारी चाबियां, खजानों की सारी चाबियां अल्लाह के पास। अल्लाह ने हर इंसान में ऐसी सिफात रखी है कि अगर उनको तलाश करे, मेहनत करे, तो अल्लाह पाक के खजानों से लेने वाला बन जाए। उनमें एक बहुत बड़ी सिफत है अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना। वज़कुरू नेमत अल्लाही अलैकुम, अल्लाह ने आप पर जो इनाम किया है उसको याद रखिए। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह व इन तऊद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, तुमने जो कुछ मांगा उस अल्लाह ने उसमें से तुम्हें दिया। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो, अगर काउंट करना चाहो तो काउंट नहीं कर सकते। अभी अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो ऐ जिन्नात, ऐ जिन और इंसान, अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज जमीअन मिन, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसको उस अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारे काम पर लगा रखा है। वमा बिकुम मिन नियमतिन फमिन अल्लाह, तुमको जो भी नेमत हासिल होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है। वश्कुरूली वला तकफुरून, जब ये इतनी मिसालें बयान की, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मेरा शुक्र करो और कुफुर मत करो। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रास्ता दिखाया, अब वो शुक्र करे या कुफुर करे, दोनों रास्ते उसके लिए खोल दिए गए। वकलीलुम मिन इबादिय शकूर, वकलीलुम मिन इबादिय शकूर, बहुत कम है मेरे बंदों में से जो शुक्र गुजार हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि पूरी जमीन में और बहुत से लोग हैं, सिफात हैं उनके अंदर, लेकिन जब शुक्र की बात आई तो फरमाया कि बहुत ही कम बंदे हैं जो शुक्र गुजार हैं। कुरान की इब्तिदा किस तरह होती है? कुरान शरीफ में इसमें मजामीन है नसीहत के, अकायद का बयान, इबादात का बयान, नमाज, रोज़े, ज़कात, हज का बयान, माशरत का बयान, अखलाक का बयान। कुरान शरीफ में सारे मजामीन, हर चीज़ बयान हुई है, लेकिन सबसे पहला सबक, सबसे पहली क्लास और जो पहला लेसन है कुरान के अंदर, वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे मालूम हुआ कि सारी कायनात में पहला सबक इंसान को सीखने का है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुछ सूरतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं, कुछ सूरतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर ख़त्म होती हैं। ये पहला सबक है, समझ में आ जाए कि सारी कायनात में तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह सुबहानहू व तआला। इंसान को खूबसूरती अच्छी लगती है, खूबसूरत चीज़ें, इंसान इल्म उसको अच्छा लगता है, और इसी तरह ताकत उससे उसको पसंद आता है, ताकत, कुव्वत, रहमदिली और एहसान और करम, अता नवाल। किसी आदमी को दूसरे से मोहब्बत करने के लिए ये चीज़ों की तलब होती है, खूबसूरती, ताकत, कुव्वत और रहमदिली। अगर आदमी गौर करे ये सारी चीजें अल्लाह पाक की जात में है। दुनिया में जितने खूबसूरत इंसान उनको अल्लाह ने खूबसूरती दी, जितने ताकत वाले आदमी अल्लाह ने उनको ताकत दी, और जितने साइंसदान और आलिम आलिमात अल्लाह ने उनको इल्म अता फरमाया। जो भी चीज पर आदमी गौर करे उसकी इंतहा अल्लाह सुबहानहु व ताला पर होगी। आदमी को अल्लाह ने नेमतें दी, आदमी बनाने वाले खालिक को छोड़कर बनने वाली चीजों में खो गया, ये आदमी का मसला है। ईंट पत्थर के मकान बनाए और मकान की ईंट में उसका दिल अटक गया, अल्लाह को भूल गया। किसी ने धागे और फैशन और चमड़े और ज्वेलरी पर मेहनत की और दिल वहां अटक गया, अल्लाह को भूल गए। किसी ने मेटल और प्लास्टिक पे हुकूमत की और उसकी चीजें बनाई और दिल अल्लाह को भूल गया। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आदमी पूरी कायनात तुम्हारे लिए बनाई और अल्लाह ने तुमको अपने लिए बनाया। अब तुम चांद पर उतरो या खला में सफर करो या गुब्बारे में बैठो या जहाज में सफर करो, अल्लाह को मत भूलो, अल्लाह को मत भूलो। पहाड़ों पर चढ़ो, समुन्द्र में उतरो, लेकिन अल्लाह को, इस जिंदगी की हकीकत को मत भूलो। इसलिए शुक्र का सबक बार बार दोहराया जाता है। आदमी की हकीकत यह है कि हजार नेमतें हो और एक कोई कमी रह गई जिंदगी में तो उस पर कंप्लेन होता है। घर भी है, सवारी भी है, बच्चे भी हैं, नौकरी भी है, हर चीज मौजूद है। एक आदमी बुजुर्ग के पास आया, कहने लगा मेरे पास सब चीजें हैं, हरी चीजें मौजूद है दुनिया की, फिर भी कोई खुशी नहीं है। मुझे कोई वजीफा बताइए, कोई इलाज बताइए। शेख ने कहा तुम एक पोस्टर बनाओ और मार्कर से या दीवार पर लिखो, बड़ा बड़ा लिखो, ओ ना शुक्रे, और उसका वजीफा पढ़ा करो, सुबह शाम उसकी तस्बीह पढ़ा करो, तो हकीकत समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा उसका वजीफा पढ़ा करो। और ये बच्चों को बचपन से सिखाना पड़ता है कि शुक्र अदा करो। एक बुजुर्ग जहाज में जा रहे थे, उन्होंने एक वालदा की आवाज आई कि बच्ची को खाना खिला रही, छोटी बच्ची को खाना खिला रही थी, लुकमा बना बना करके एक उसके मुंह में डाल रही थी, और हर लुकमे में बच्ची को कहती कि शुक्रिया अदा करो, से थैंक यू। एक प्लेट खाना खिलाने में 25 मरतबा कहलवाया उसने बच्चे से कि से थैंक यू, ताकि बचपन से आदत पड़ जाए हर बात पर थैंक यू कहने की। शुक्र अदा करने की खसलत ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत फायदे की चीज है। शैतान को जब अल्लाह के दरबार से निकाला गया तो शैतान ने कसम खाई, शैतान ने अल्लाह से वादा किया और शैतान ने कसम उठाई कि मैं आदम की सारी औलाद को गुमराह करूंगा और सबको जहन्नम में ले जाऊंगा, और मुझे आप मोहलत दीजिए, मैं सबको बहकाऊंगा। कैसा बहकाऊंगा? सूरह आराफ में बताया कि शैतान ने कैसा अपना प्लान बताया, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم, फिर मैं उन पर चारों तरफ से हमले करूंगा। शैतान ने कहा चारों तरफ से हमले करूंगा, उनके सामने से भी, उनके पीछे से भी, उनके दाएं तरफ से भी, उनके बाएं तरफ से भी, हर तरफ से आकर उनको बहकाऊंगा। फिर शैतान ने कहा कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और आप उनमें से अक्सर लोगों को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। शैतान ने अल्लाह ताला को फरमाया, बताया कि मैं सबको बहकाऊंगा और होगा ये कि आप उनमें से बहुत सारे लोग उनको शुक्र करने वाला नहीं पाएंगे। ये वो चीज़ है जिसको दूसरी जगह फरमा दिया, व कलीलुम मिन इबादी शकूर, बहुत कम बंदे शुक्र करने वाले। तो अब शैतान का एक दाव मालूम हो गया, तो उसका इलाज क्या है? इलाज यह है कि अल्लाह ने जो कुछ अता फरमाया है उस पर खूब शुक्र करें। अल्लाहुम्म लकल हम्द व लकल शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो चीज़ नहीं मिली या कोई हालात मुश्किल में आ गए उस पर भी शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल हाल, हर वक्त शुक्र अदा करें। अब शैतान से महफूज हो जाएगा। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि बीमारी में भी शुक्र करो। बीमारी के फजाइल, यानी बीमार आदमी को मांगना नहीं चाहिए, लेकिन बीमारी आ गई उसमें मग़फ़िरत होती है, आदमी की दुआ फरिश्तों की तरह कबूल होती है, आदमी के दर्जात बुलंद होते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं। एक रात के बुखार से एक साल के गुनाह माफ़ हो गए। बीमारी आ ही गई तो अब उसके फजाइल का पूरा एक दफ्तर है, जैसे फजाइल अमाल होते हैं, नमाज के फजाइल, रोजे के फजाइल, उसी तरह 50-60 सफ़े का बीमारी के फजाइल की भी एक किताब है, वो भी पढ़नी चाहिए। तो बीमार बीमारी में कामयाब हो गया, बादशाह बादशाहत में कामयाब हो गया, फ़कीर फ़कीरी में कामयाब हो गया। ये होती है इस्लाम की तालीमात के जो हाल आ गया उसमें भी कामयाबी का एक जरिया पैदा कर देते हैं कि लो इसमें भी कामयाब हो जाओ, और उसको दूर करने की अल्लाह से दुआ भी करो और मांगो भी, और जो हो जाए उस पर राजी भी रहो। एक बुजुर्ग के बीमार थे, सख्त बीमार, बहुत सख्त बुखार। तो उनके शागिर्द आ गए, पूछा हजरत आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथ पांव भी ठीक हैं, सर भी ठीक है, आंख भी ठीक है, दिल भी काम कर रहा है, गुर्दा भी काम कर रहा है, पेट भी ठीक है, हाजमा भी ठीक है। पूरा उन्होंने बताया दर्जन भर चीजें कि बिल्कुल ठीक है, कुछ मसला नहीं है, थोड़ा सा बुखार आ गया है, दुआ कीजिए वो भी ठीक हो जाए। पहले खूब शुक्र अदा किया, फिर अपनी मजबूरी भी बता दी। तो अल्लाह का शुक्र हर अच्छे बुरे हालात में। बुजुर्गों ने फरमाया है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि सवाए बड़े अकाबरीन बुजुर्ग अहलुल्लाह के, इन चीजों से कोई नहीं बच सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं सवाए बहुत बड़े पहुंचे हुए अल्लाह के बुजुर्गों के, इन चीजों से कोई नहीं बच सकता। क्या चीजें हैं वो? लालच, ग्रीड, झूठ, शिकवे शिकायत और रिया, शो ऑफ। शिकवे शिकायत और शो ऑफ, रिया। अल्लाह पाक इन चीजों से हमें बचा दे, हमारी तरबियत फरमा दे। जिंदगी का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत नेमतें दी, हर चीज दी, और अस्तग़फिरुल्लाह, हमने वक्त जाया किया, हमने उन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। जिंदगी का खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आदमी सर से पैर तक अपना जायजा ले, हर चीज को अल्लाह ने अपनी कुदरत से बेहतरीन बनाया। रोजाना लाखों बच्चे दुनिया में आते हैं, हर बच्चे को अल्लाह पाक खूबसूरत आंखें देते हैं, खूबसूरत हाथ पांव देते हैं। हर बच्चे की शक्ल अलग होगी और हर एक की आवाज़ भी अलग होगी और हर एक का फिंगर प्रिंट भी अलग होगा। ये अल्लाह के दरबार से मिलता है। अल्लाह वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अपने अंदर क्या तुम नहीं देखते? अल्लाह पाक ने कितनी मुसीबतों और बलाओं से हमको बचा रखा है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं जब पहली दफ़ा, तो डॉक्टर साहब एक फार्म देते हैं 4-5 सफ़े का, उसमें सारी बीमारियां ए से लेके जी तक लिखी हुई होती है, और आपसे पूछते हैं कि ज़रा निशान लगाइए आपको कौन कौन सी बीमारी है। वो पर्चा भर के दाखिल करना होता है। अब आदमी देखे तो उसके होश उड़ जाए कि ऐसी ऐसी बीमारियां हैं दुनिया में। तो उसमें से हर एक पर जहाँ टिक नहीं लगाया, उसमें एक शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस बीमारी से बचाया, इस बीमारी से ही बचाया, इस बीमारी से ही बचाया। 5 सफ़े मालूम हुआ कि 2-1 ही टिक लगा पाए थे कि भाई कोई बीमारी नहीं मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मतलब सर में दर्द था चूँकि मेरी कवरेज थी, तो मैं ज़रा हाल पूछने को आ गया, मैं कोई बीमारी उमार नहीं हूँ मैं। तो अल्लाह पाक ने अस्पताल आदमी देखे कितने मरीज हैं, हर किस्म के वार्ड, बदन के हर ऑर्गन उसकी बीमारी के वार्ड अलग होते हैं, और उसके अलावा कुछ लोग बेहोश भी होते हैं, कुछ लोग ICU में भी होते हैं, कुछ मैयतें भी रखी हुई होती हैं। अस्पताल का एक दौरा करे आदमी को हकीकत मालूम हो जाएगी, और कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इन सारी लाखों मुसीबतों से हमें और घर के लोगों को बचा रखा है। फिर आदमी बड़े बड़े डाउनटाउन में चला जाए, बड़े बड़े शहरों में, जितनी ऊंची ऊंची 100-100 मंजिला इमारतें नजर आ रही हैं, होता क्या है कि उनके नीचे फुटपाथ पर गरीब लोग होमलेस सुबह रात को बैठे रहते। उन बेचारों के लिए एक रेस्ट रूम भी नहीं होता कि कहीं वो जाके फारिग हो सके। ताकि बाज़ जगहों पर सुबह को सिटी वाले आके पूरे सड़कों पर छिड़काव करते हैं, क्योंकि वहाँ बदबू फैली हुई होती है, पूरी सड़कों में छिड़काव करके जाते हैं। ये आज का हाल है, बड़े बड़े डाउनटाउन में जाके देखते हैं, हजारों लोग बेचारे, कोई चीज़ नहीं उनके पास, सर्दी से ठुठर रहे होते हैं। जेल का एक दौरा कर लीजिए, शैतान और नफ्स ने कितने लोगों को बहकाया और बेचारे जरा सी बात पे उनको सजा हो गई, कहाँ पहुँच गए। अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी मुसीबतों से, चीज़ों से हम सबको बचा रखा है। जब हम अखबार पढ़ें और खबरें देखें, कहीं जलजला आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं सैलाब आ गया, तो उम्मत की बदहाली और उम्मत का अफसोस हमारे दिल में हो, उनकी बेहतरी की कोशिश की जाए, सदकात दिए जाएं, दुआ की जाए, और डरना चाहिए अल्लाह पाक ने हमें इतनी सारी चीज़ों से बचा रखा है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र। घर में हम अपने बावर्ची खाने के रेफ्रिजरेटर और चीज़ों पर नज़र डालें, तो 1 महीने तक खाना पकाने का सामान, चावल, गोश्त, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जेब में भी है, पर्स में भी है, और बैंक में भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कितना शुक्र अदा करना चाहिए। एक बुज़ुर्ग बग़ैर जूते के एक साहब जा रहे थे, उनको बहुत अफसोस, मेरे पास जूता भी नहीं है। आगे देखा कि एक आदमी के पैर ही नहीं थे, हैंडीकैप। तब उन्हें शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझको पैर अता फरमाए, जूते नहीं हुए तो क्या हुआ, जूते नहीं हुए तो क्या हुआ। बाज लोग हैं उनकी जबान है लेकिन बोल नहीं सकते, मशीन लगानी पड़ती है एक लफ्ज बोलने के लिए, किसी ने सलाम किया उन्होंने मशीन मंगवाई फिर उसके बाद जवाब दिया। एक साहब तो आयादत के लिए गए, उनकी यानी जिंदगी, कारोबार, दुकान, घर, बच्चे सब मौजूद, लेकिन ऐसा हुआ कि अब कई साल से वो बीमार थे बिस्तर पर, तो घर वालों ने ये किया कि उनके वास्ते कंप्यूटर स्क्रीन लगा दी। उनकी दुकान में जितने कैमरे थे, जितने साइड, जितनी बोतलें, शीशियाँ, उन सब का मंजर हर वक्त उनके सामने कंप्यूटर पे आता रहता, दिन भर उसको देखते रहते। तो ऐसा अल्लाह पाक कभी कभी आदमी के ऊपर आजमाइश आ जाती, और ये सब आरजी है। कितने लोग पैदाइशी नाबीना होते हैं लेकिन कुरान पाक के बहुत अच्छे हाफिज होते हैं, जबरदस्त जबरदस्त हाफिज कुरान होते हैं, और अल्लाह पाक उनको क़यामत में बड़ी बड़ी नेमतें उनको अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। जब जन्नती को एक गोता दिया जाएगा जन्नत में, और अल्लाह पाक पूछेंगे कि आदम के बेटे तुमने दुनिया में कोई परेशानी, तुमको याद है कोई परेशानी, तो कहेगा नहीं अल्लाह, मुझे मैंने दुनिया में कोई परेशानी देखी नहीं, जन्नत की एक झलक देखकर सब भूल गया, जन्नत की एक झलक देखकर सब भूल गया। हमें इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे वालदैन मुसलमान हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उनको सारी फैमिली, वालदैन, हर एक को छोड़कर आना पड़ता है, और कितने ऐसे होते हैं कि उनके अम्मा अब्बा गुजर चुके दुनिया से, तो वो अफसोस के साथ पूछते हैं कि क्या मैं अपने अम्मा अब्बा के लिए दुआएं मगफरत कर सकता हूँ, मेरे अम्मा अब्बा दुनिया से गुजर गए। बास कहते हैं कि मेरे अम्मा अब्बा ने मुझको खाना खिलाया, मुझको घर दिया, छप्पर दिया, मेरी हिफाजत की, मुझको पलाया बढ़ाया, और अब मैं उनको किस तरह अल्लाह के बारे में बताऊं, बेचारे अफसोस का इजहार करते। और बास जगहों पे तो ऐसा होता है, इंडिया में एक खातून मुसलमान हुई घर में छुप कर, तो उन्होंने कहा कि मेरे अम्मा अब्बा को अगर पता चल जाए, मेरे अम्मा अब्बा को अगर मालूम हो जाए कि हम मुसलमान हैं तो मुझको पकड़कर मार डाले। इतने खतरे में, मुश्किल में बेचारे अल्लाह अल्लाह करते, नमाज पढ़ते चुपके और दीन का काम करते। तो हमें इतना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे नमाज पढ़ने, दीन पे अमल करने में कोई हमारी पिटाई नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। आदमी रात के वक्त सितारों को देखता है, चांद को देखता है, तो किसी की ख्वाहिश हो कि हम वहाँ चले जाते, चांद पर रहते, सितारों में रहते। अल्लाह पाक ने जहाँ रखा है जमीन पर, ये बहुत अच्छी जगह है, दूसरी जगहों पर हवा लेने के लिए सांस की ऑक्सीजन भी नहीं, जाओगे तो वहीं पर ख़त्म हो जाओगे। और अल्लाह ने इतना खूबसूरत ये ब्लू आसमान बनाकर दिया है, ये सिर्फ जमीन के लिए है, अगर कोई थोड़ा ऊपर चला जाए तो हर चीज़ डार्क है, हर चीज़ डार्क है। ये ब्लू आसमान जो अल्लाह ने बनाकर दिया है, ये सिर्फ इस जमीन को मिला है, तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है, जिस घर में, वही बेहतरीन है। चांद पर जाकर आदमी देखे जमीन को तो एक फुटबॉल की तरह नजर आती, और उसके आगे चला जाए मार्स और आगे, तो एक छोटा सा डॉट नजर आएगा आसमान में कि ये हमारा एक प्लेनेट है, ये जमीन। अब आदमी सोचे कि इतनी इतनी सी चीजों पर लोग, जमीनों में, जायदाद में, और लोग एक दूसरे से झगड़ते हैं, मेरा है कि तुम्हारा है, छोटे छोटे डॉट और डैश पर लोग जल रहे हैं और पूरी जिंदगी खत्म कर दी उन्होंने। आदमी थोड़ी अपनी फिक्र में अगर वसत पैदा करे तो उसको नजर आ जाएगा कि जो अल्लाह ने दिया है बहुत बड़ी नेमत है। कुरान पढ़ना इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने कुरान अता फरमाया, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान पढ़ना ये सिर्फ इंसान की खसूसियत है, बाकी मखलूकात उनको सुनने के लिए इजाज़त है, पढ़ना है सिर्फ इंसान की खसूसियत है। इतनी बड़ी नेमत अदा करवाई। बाज़ इलाकों में आज भी कुरान के मुसहफ नहीं होते लिखे हुए, रिटन, लोग जबानी याद करते हैं, जबानी पढ़ते, जबानी सुनाते। हमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, आदमी गौर करे तो जितनी उम्र अल्लाह ने सहाबा और ताबईन को अता फरमाई थी, वही अभी भी अता फरमाई थी। उम्र तो अभी भी उतनी है लेकिन इल्म के असबाब और आलात और वक्त बचाने वाली चीज़ें ज़्यादा अता फरमा दी। सफ़र करना आसान कर दिया, खाना पकाना, कपड़े धोना, घंटों की बचत, मुसहफ और किताबें और चीज़ें, पूरा आलिम कोर्स एक सीडी के ऊपर, पूरा आलिम कोर्स एक सीडी के ऊपर, पूरी दुनिया की मालूमात फोन के अंदर। आज ये चीज़ें पहले कभी मयसर नहीं थी। हदीस शरीफ में फरमाया, नेमतान मगबून फीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सेहतु वल फराग। दो चीज़ें, दो नेमतें ऐसी हैं उसके बारे में लोग बहुत नुकसान में हैं। क्या दो चीज़ें हैं? सेहत और फारिग वक्त। सेहत भी है, वक्त भी फारिग है, तो भाई नेक कमल करो, दौड़ो नेकियों में। वलकद यस्सरना अल-कुरआन लिज़्ज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? कुरान शरीफ कागज़ में लिखा हुआ है, सीडी में भी है, फ़ोन में भी है, वेब में भी है, कैसेट में भी है, लेकिन असल मुकाबला ये है कि क्या मैं अपने दिल में लाऊं। दिल में लाने का मुकाबला है। खूब शुक्र करे और खूब अमल करे। शैतान आदमी का खुला दुश्मन है, हजारों साल से आदम के बच्चों के पीछे लगा हुआ है, और शैतान बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा स्कॉलर। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितनी तालीमात हुई, किताबें, शैतान सब चीज़ें पढ़ चुका और सब मालूम है उसको कि किसको कैसे बहकाना है, किसको कैसे बहकाना है। बड़े बड़ों को बहकाने की कोशिश करता है। तो शैतान का एक छोटा सा एक दाव ये होता है कि सबको लेजी कर दिया जाए। मियाँ अभी उम्र पड़ी है, आप जवान हैं, जिंदगी लंबी है, आखिरी जमाने में तौबा कर लेना, कलमा पढ़ लिया था तो अब बस हो गया, आप दुनिया में खाओ पियो मज़े करो। शैतान आखिर दिमाग में चीज़ें डालता है कि रात लंबी है, अभी सोते रहो, कलमा पढ़ ही लिया था तुमने, आगे मिलेगा। तो शैतान के दाव बहुत सारे, आदमी को सुस्त और काहिल बनाना, भाई कोई काम मत करो बस ठीक है। जब आदमी ने कोशिश की, थोड़ा काम काज किया, नहीं जिंदगी मुख्तसर है, मुझे कुछ नेकियां कमानी है, मालूम नहीं कब फरिश्ता ले जाए, तो शैतान दूसरे दरवाजे से आ गया। अब उसने दरवाजा खोल दिया कि आप इतने बड़े बुजुर्ग हो गए, वलीउल्लाह हो गए, आपके जैसा कोई खूबसूरत और इल्म वाला, आपके जैसा कोई है ही नहीं पूरे महल्ले में, पूरी दुनिया में। तो अब आदमी वहां से मगरूर हो गया, उसके अंदर नाज और शेखी, और यहीं से शुरू हुए लड़ाई झगड़े फसाद, हर जगह शुरू हो गए। तो शैतान ने ये दरवाज़ा खोल दिया। तो आदमी, उसका इलाज क्या है? उसका इलाज शुक्र है। उसकी मिसालें कुछ अर्ज की जाती हैं, हमारे बुजुर्गों ने मिसालें देते हैं कि एक बारिश का कतरा आसमान से टपक रहा था, बारिश से, बादल से, और वो बैठे बैठे रास्ते में मगरूर हो गया, प्राउड हो गया। बारिश के कतरे ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और मैं बहुत तेजी से जा रहा हूँ, और मैं कितना खूबसूरत चमकदार हूँ, राउंड शक्ल का हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, और दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जब वो बारिश का कतरा आके समुंदर में गिरा, तो उसने देखा कि मेरे जैसे तो करोड़ों अरबों कतरे मौजूद हैं, मेरी क्या हैसियत है। एक हाजी ने टिकट खरीदा और हज को चला गया, और मक्का मुकर्रमा पहुंच के रात को 2 बजे उठ बैठा, और 2 बजे रात को उसने वजू किया और हरम शरीफ की तरफ गया, और दिल में सोच रहा था कि इतना बिल्कुल खाली होगा, मैं सीधा हजरे अस्वद पर पहुंच जाऊंगा। जब वो दाखिल हुआ हरम शरीफ के अंदर, तो क्या देखता है कि हजारों हजार, वो तो पूरा भरा हुआ है, कोई जगह बैठने की जगह भी नहीं। आसमान के चप्पे चप्पे पर इतने फरिश्ते इबादत कर रहे हैं, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कयाम में है, हजारों हजार साल से। हमारी आपकी इबादत की कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह पाक अपने रहम से फजल से कबूल फरमा ले, और उसी की दौड़ है। लेकिन मगरूर नहीं होना। का एक लतीफ़ा बयान किया जाता है कि एक चरवाहा था, बकरियां चराता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसको 2 रिकत नमाज नफिल पढ़ने की तौफीक हो गई, तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, 2 रिकत नफिल पढ़ते ही वो फौरन बैठ गया कि अब मैंने इतना बड़ा नेक काम किया कि मेरे ऊपर वही नाजिल हो जाए कहीं, खुश उस इंतज़ार में बैठ गया। ये अरबी का एक मुहावरा है कि वो 2 रिकत पढ़ के सोचा कि अब मेरे ऊपर वही आ जानी चाहिए। भाई जो कुछ अल्लाह ने दिया है, ये अल्लाह की नेमत है, हमारा आपका उसमें कोई इस्तेहकाक नहीं है। और ये मिसालें बार बार बताई जाती हैं, पहले भी बताई गई होंगी। एक दिन दफ्तर को गए कोई साहब, गाड़ी निकाली तो देखा कि सारी लाइटें ग्रीन थी, फौरन पहुंच गए दफ्तर। इसमें आपका क्या कमाल, अल्लाह ने किया। वैसे दफ्तर कंप्यूटर में ईमेल खोली तो उसमें हर एक ईमेल में तारीफें लिखी हुई हैं, कोई कह रहा यस सर, कोई कह रहा काम हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं, दिलो जान से हाजिर। तो आदमी, इसमें आदमी का क्या कमाल है, ये तो अल्लाह की तरफ से उस दिन एक रहमत नाजिल हुई। जितनी नेमतें हैं, राहतें हैं, असबाब, हाथ पैर, काबिलियत, सलाहियत, ये सब अल्लाह की तौफीक है और इम्तहान है। जिसको दिया है उसका भी इम्तहान है शुक्र का, और जिसको नहीं दिया उसका भी इम्तहान है सब्र का। तो दिया है शुक्र करो, नहीं दिया तो सब्र करो। इसमें आदमी को जो सिफत चाहिए शुक्र की और तवाबों की, ताकि ये एरोगेंस और प्राइड और ये फख्र और गुरूर ये नहीं आए। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस वक्त आप अपनी नज़र में अच्छे मालूम हो, जिस वक्त ये दिल में ख्याल आया कि मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ, ये एक प्रूफ है, समझ लो कि इसी वक्त आप अल्लाह की नज़र से गिर गए हो। इसी वक्त, यानी लिटमस टेस्ट है ये, जैसे ही ये ख्याल आया इसका फौरन मतलब है कि इसी वक्त मैं अल्लाह के दरबार में गिर गया हूँ। फरमाया कि अल्लाह के वली जितना अल्लाह की मार्फत और तस्किए और एहसान में तरक्की करते हैं, खुद को इतना ही हकीर और कमतर समझते हैं। सिर्फ जबान से हकीर नहीं कहना, बल्कि दिल में अपने ऐबों को सोचना, ये हकीकी तवाबो है। हमारे बुजुर्ग और मशायख, देखो हर आदमी बुजुर्ग नहीं हो जाता, हर आदमी शेख नहीं हो जाता, यहाँ मसला ये है कि हर एक को शेख कह देते, हर आलिम भी शेख नहीं होता। ये तो एक सिलसिला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से गोल्डन चेन है, जैसे मुहद्दिसीन की होती है कि एक बुज़ुर्ग को दूसरे बुज़ुर्ग से इजाज़त होती है और वो सिलसिला पहुंचता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो जो मशायख होते हैं सिलसिले में, उनकी शान ये होती है कि अपने आप को दुनिया के तमाम मुसलमानों से कमतर समझते हैं। और मुसलमान तो क्या, दुनिया में जो दूसरे हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे भी खुद को कमतर समझते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का मकूला है, वो कहते हैं कि ये मैं अपने आप को तमाम मुसलमानों से फ़िलहाल कमतर समझता हूँ और तमाम काफिरों से भी फिल माल कमतर समझता हूँ। मालूम नहीं मेरे खात्मे के वक्त मैं ईमान पर रहूँ कि नहीं, और मालूम नहीं वो ईमान पर आ जाए तो उसका खात्मा मुझसे अच्छा हो जाए, और जितने जानवर हैं उनसे भी कमतर समझता हूँ। उनके बाद में जो शागिर्द आया मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि सुबह शाम बतौर वजीफे के ये दुआ पढ़ लिया करो, इसको बतौर दुआ के, कि या अल्लाह मैं अपने आप को कम से कमतर समझता हूँ। बाकायदा वजीफा बताते हैं, वजीफा सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं कहते, वो कहते हैं ये कहो वर्बली अपने जबान से कहो, सुबह शाम अपने दिल में कहो, मजलिस में नहीं, दूसरों के सामने मिंबर पर नहीं, बल्कि मसल्ले में बैठ के अल्लाह से कहो। जो बुजुर्ग, एक बुजुर्ग आए, उन्होंने इज्तमा में 45 मिनट दुआ की, 45 मिनट, उसमें कोई अजीब बात नहीं। जो असल बात है, बुजुर्गों ने फरमाया कि ये अपने घर में अकेले बैठ के 3 घंटा दुआ करके वहां से आ रहे थे। तो अपनी मजलिस में और मस्जिद में और मिंबर पे तो सभी रो सकते हैं, इसमें कोई कमाल नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं असल कमाल ये है कि बाजार में नजर बचा लो और अकेले बैठ के अल्लाह को याद करो, जब कोई नहीं देख रहा उस वक्त काम करो। बाज मशायख के यहाँ ऐसा है, मशायख नक्शबंदिया आलिया उनके सिलसिले में मुजद्दिदिया, कि वो कहते हैं कि किसी को दिखा के हम तस्बीह भी नहीं पढ़ते, छुपा के पढ़ते, किसी को मालूम ही ना, फर्ज नमाज पढ़ के घर चले जाते, सारी नफलें घर पे पढ़ते, किसी के सामने और कोई इबादत नहीं करते, उनका एक खास सिलसिला है। तो वही अपने आप की अपनी नेकियों को छुपाना, तवाज़ो वाले को अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं। जो आदमी इस सलूक में और तस्किया नफ्स के रास्ते में चलता है, और किसी शेख से ताल्लुक़ हो, तो अपने शेख से दिल का हाल और ऐब बताने में छुपाना ना चाहिए, वरना इस्लाह कैसे होगी। और नेमतों पर शुक्र हो, मैं इस काबिल नहीं था, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, अल्लाह ने सिर्फ अपने फजल और एहसान से मुझको अता फरमाया। अल्लाह की ज़मीन पर खड़े हैं, उसकी हवा में सांस लेते हैं, उसका दिया हुआ खाते हैं, हाथ पाँव जबान सब उसकी, जबान भी उन्होंने दी, तस्बीह भी उन्होंने सिखाई, तौफीक भी दी कि मियाँ तस्बीह करो, तहज्जुद में भी उठाया, नेक काम भी करवाया, फरिश्तों को भी लगवाया, सवाब भी दिया, और आखिर में जन्नत का टिकट भी इंशाल्लाह दे देंगे। हर चीज़ अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। तो इसलिए बाज़ मशायख हैं वो जिक्र करते करते उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि पूरी कायनात में मुबदा से महाद तक, शुरू से आखिर तक, उनको सवाए अल्लाह के कोई और चीज़ नज़र भी नहीं आती। जितनी चीजें सब शक्लें हैं, ये सब अल्लाह ने बैठा रखे हैं और काम पे लगा रखे हैं, है कुछ नहीं, ये सिर्फ शक्लें हैं। अल्लाह की बड़ाई, अजमत और शान आदमी के जहन में आए तो अपने आप को भूल जाए। अल्लाह के कलिमात लिखने के लिए सारे दुनिया के समुंदर और सारे दुनिया के दरख्त ये खत्म हो जाएंगे, अल्लाह के कलिमात नहीं लिख सकते। एक साले आबिद जाहिद आलिम फाजिल दाई पूरी जिंदगी में सारी दुनिया में जाए अल्लाह की बड़ाई का सिर्फ एक जर्रा ही बयान कर सकता है। शुक्र करना चाहिए, मेरी तलब भी उन्हीं के करम का सदका है, कदम ये उठते नहीं उठाए जाते हैं। जिसको अल्लाह ने तौफीक दी वही उठा तहज्जुद में, जिसको तौफीक दी वही मस्जिद को आया, जिसको तौफीक दी वही बैतुल्ला को गया। कदम उठते नहीं है, उठाए जाते हैं। वहां से तय होता है, शबे बारात में तय होता है इस साल फलां हज को जाएगा, हज को जाएगा, और उसको अल्लाह ताला खींच लेते। सवाल करने से पहले दिल में डालने वाले, अर्ज करने से पहले कबूल करने वाले। शैतान को शिकस्त देना है, मैं उसका मुस्तहिक नहीं था, अल्लाह ने अपने फजल व करम से अता फरमाया, जब चाहे वापस ले सकते हैं। जब अल्लाह चाहते हैं तो सीधे साधे कपड़ों में भी इज्जत दे देते हैं, और जब चाहते हैं तो ताज और तख्त में भी जलील कर देते हैं। एक नमरूद बादशाह था, उसको बादशाह तख्त ताज सब क्यों रहते हुए अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर से उसको जलील करवा दिया, और लोग आके उसको जूते मारते थे। जब अल्लाह चाहते हैं तो ताज और तख्त में भी जलील करवा देते। अल्लाह ने पर्दा पोशी फरमा रखी है हमारे ऐबों की, अगर लोगों को हमारी असल हकीकत का पता चल जाते हैं तो नफरत करते, तो इसमें कोई शेखी मारने का कोई मौका नहीं। फिर यह है कि हमारी जिंदगी में जो बेहतरी आई, इनामात आए, उनको अल्लाह का फैज समझना, और अगर किसी बुजुर्ग और बुजुर्गों से ताल्लुक है तो ऐसा समझना कि उनकी दुआएं हैं, उसका फैज है, शेख की दुआ से अल्लाह ने मुझको अता फरमाया। और जिनको कोई बुजुर्ग शेख से राबता ना हो, उनकी किताबें मलफूजात पढ़ना और हालात को सुनना, जिन्होंने अल्लाह के वास्ते अपने आप को मिटाया हो। और दीन के काम बहुत हैं, ऐसा समझना कि दुनिया में जितने दीन के काम हो रहे हैं वो मेरे ही काम है, लेकिन दूसरे लोग उनको कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में पिछली रात को पूरी दुनिया में कितनी नई मस्जिदें बनकर आ गईं, पूरी दुनिया में कितने लोग कल रात को मुसलमान हो गए, पूरी दुनिया में कितने बच्चे आलिम फाजिल हाफिज हो गए कल, ये सारे लोग हमारा ही काम कर रहे हैं बगैर तनख्वाह के, बगैर तनख्वाह के। और ये अल्लाह मियाँ का अखबार है, ये दुनिया का डैशबोर्ड है, ये छपता नहीं है। कितने ही लोगों ने कल रात को तौबा कर ली, अल्लाह के रास्ते पर आ गए, ये सब ये हमारा ही काम कर रहे हैं। उनके बारे में खुश होना और उनके लिए दुआ करना, तो उनकी नेकियों में से भी एक हिस्सा, एक मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपको भी मिल जाएगा, कि हम कहाँ कहाँ जाकर ये इतने काम करते, ये सब लोग खुद बखुद कर रहे हैं, तो उनके लिए दुआएं करना। और अपने यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी को किसी चीज़ में अटकाना नहीं, बल्कि हर एक की खैरख्वाही करना कि भाई मेरा ही काम कर रहे हैं, ये मेरा ही काम कर रहे हैं। किसी से हसद ना हो, किसी से मुकाबला ना हो, किसी की गीबत ना हो, तरदीद तनकीस तनकीद ना हो, और कोई हर एक से इकराम का मामला हो, हर एक से मोहब्बत और इकराम का मामला हो कि ये मेरा ही काम कर रहे हैं। दीनी कामों में ताहुन करना और दूसरे दीनी कामों को हकीर ना समझना, सब मेरा काम कर रहे हैं, सब मेरा काम कर रहे हैं। नरम दिली हो, शुक्र हो, तवाबो हो, सखावत हो, मोहब्बत हो, आलमी फिक्र हो, और इखलास हो, सिद्क हो, सब के लिए दुआ हो। और जहाँ तक मेरा मामला है, ये समझे कि मैं बहुत ही नाशुकरा और नालायक और बेसलीका आदमी हूँ, लेकिन अल्लाह ने हजारों नेमतें बगैर क्वालिफिकेशन के मुझको दे रखी है। दो आंखें हैं, एक से मैं अपनी शॉर्टकमिंग अपनी कमजोरियां देखूं, और दूसरी आंख से दूसरों की खूबियां देखूं, दूसरों की खूबियां। एक आदमी अपने घोड़े से नाराज हो गया, एक आदमी अपने घोड़े से नाराज हो गया, उसने एक एजेंट को कहा कि ये घोड़ा बेच दो, मुझे पसंद नहीं। मिसाल दी जाती है, कहीं झगड़ा हो गया घर में, कम्युनिटी में कहीं, तो किसी दुश्मनी हो गई, भाई मुझे नहीं चाहिए आदमी। तो एक आदमी ने एक घोड़े से नाराज हो गया, एजेंट को कहा भाई मेरा घोड़ा है बेच दो, ये मुझको नहीं चाहिए, ले जाओ यहाँ से। तो एजेंट ने अब उसमें एक मार्केटिंग का एक फ्लायर बनाया कि अब इसको बेचना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं घोड़े के ऊपर। तो उसने जो है जाकर इश्तहार बनाया कि इतना जबरदस्त तेज रफ्तार सुबुक रफ्तार घोड़ा है, बहुत ही कम खाता है और बहुत ही दूर जाता है, पर किलो इतने माइल जाता है, और मालिक का बहुत ही ज्यादा वफादार है, और शाही खानदान का है, असली घोड़ा है, हजारों में एक है, पूरा फ्लायर बनाया और बाजार में खड़े होके उसकी खूबियां बयान करना शुरू कर दिया सुबह शाम। तो लोग जमा हो गए, ग्राहक आ रहे हैं, अब उसकी कीमत लग रही है, नीलाम इतने का है, लाखों का है। मालिक भी वहां से गुजरा, जब उसने सुना कि इतना जबरदस्त ये घोड़ा है, सुबुक रफ्तार भी है, तेज रफ्तार भी है, कम खाता है, बहुत दूर जाता है, शाही खानदान का है, वफादार है, उसने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं किया, खबरदार ये घोड़ा मत बेचना, वापस करो मुझे, मैं लेके जाता। उसने कहा कि इतना अच्छा है तो मुझे को दे दो, बेचते क्यों हो। तो ये किस्सा है कि हमारे आसपास घर में, मस्जिद में, पड़ोस में, दफ्तर में जिससे वास्ता पड़ता है, अगर उनकी अच्छाइयां देखने लगें तो हमारा हाल भी वैसा ही हो जाए। घर वाले लाखों में एक, और माँ के कदमों तरे जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, और रिश्तेदार भाई बहन और पड़ोस ये लाखों में एक हैं जो अल्लाह ने हमारे हमारे साथ रहने के लिए इनको मुंतखब फरमाया। खूबियां देखे तो जिंदगी जन्नत बन जाएगी। खूब शुक्र करें, जो अल्लाह ने दिया है उसके ऊपर खूब शुक्र करें। कुरान पाक में हालात बताए गए लोगों के अकवाल और आमाल। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र भी आया जिन्होंने ये जिंदगी का टेस्ट बहुत अच्छे नंबरों में पास किया, A+ में, और उन लोगों का जिक्र भी आया जिन्होंने इस टेस्ट में जो फेल हो गए बुरी बुरी बातें कह के। उनका क्या कसूर था? किसी चीज पर अकड़ गए और कोई बात गलत कह दी उन्होंने, एक बात पर पकड़ हो गई। सूरह नून में जिक्र आता है बाग वालों का। आप ये तफसीरें और तफसीलात तो पढ़ सकते हैं, यहाँ सिर्फ इशारे के तौर पर मजामीन बताए जाते हैं कि सूरह नून में एक बाग वालों का, नून वल कलम में बाग वालों का जिक्र आया। उनको बाग दिया था अल्लाह ने, तो वो अकड़ गए कि जल्दी जाकर फल तोड़ लो, कहीं कोई मिस्कीन फकीर ना आ जाए आज। अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, अल्लाह अकबर। इतनी सी बात पर उनकी उनकी पकड़ हो गई। जब वो गए तो सारे बाग पर कोई आफत आई हुई थी, अल्लाह ने बाग तबाह कर दिया। कौम आद का जिक्र आया कई जगहों पर कि वो अकड़ गए अपनी ताकत पर, कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है जो ताकत में हमसे ज्यादा हो। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन होगा, ये जो बोल होते हैं ना, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन होगा, हमसे ज्यादा इल्म वाला, हमसे ज्यादा कुरान वाला कौन होगा। दी बात दीन की हो या दुनिया की हो, लेकिन ये बोल पसंद नहीं अल्लाह को। कौम आद ने कहा कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन होगा। अल्लाह पाक ने ऐसी आंधी भेजी एक हफ्ते से जायद, पटक पटक कर मारे गए, पूरी कौम खत्म हो गई। फिरौन ने कहा बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में कि इन्ना फौकहुम काहिरून, हमें इन पर पूरा पूरा काबू हासिल है। फिरौन के बोल अना रब्बुकुमुल आला, बड़ी बड़े दावे करता था। अल्लाह ने उसको सारे लोग उसकी फौज के साथ समुद्र में डुबो दिया। जिसने भी दावा किया किसी चीज़ का, ताकत का, किसी का, अल्लाह ने उसको डुबो दिया। हारून ने दावा किया, उसको इतने खजाने मिले थे कि उनकी चाबियां उठाना भी मुश्किल होता था, इतने ऊंट चाहिए उनकी चाबियां रखने के लिए, तो खजाने कितने ज्यादा होंगे। अब वो अकड़ गया, कहने लगा इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तो मुझे मेरे नॉलेज की वजह से मिला है, ये तो मेरी काबिलियत है। अल्लाह ने कारून को धंसा दिया। अब तक अपने सामान चीज़ों के साथ ज़मीन में धंसता चला जा रहा है, धंसता चला जा रहा है, मिसाल बना दिया। एक कौम गुजरी है कौम सबा। कौम सबा, सूरे सबा में उसका जिक्र आता है। उस कौम को अल्लाह ने फल दिए, बागात दिए, उनको अच्छे रास्ते दिए, हाईवेज दिए, यमन से लेके शाम तक तिजारत को जाते, और हर थोड़े थोड़े फासले पे बस्तियां बसाई अल्लाह ने, सैकड़ों बस्तियां, कि यहाँ आराम करो, खाओ पियो, रेस्ट एरिया और सफ़र करो, कोई ख़तरा नहीं, आराम से रहो। तो उस कौम को क्या सूझी कि जब हर तरह का आराम मिल गया तो वो कहने लगे कि रब्बना बाइद बैना असफारिना, कि हमारी सफर की मंजिलों को दूर दूर के फासले पैदा कर दीजिए। यानी ये क्या कि बस फौरन फूड और रेस्ट और हाईवे और मज़े और आराम। सफर तो वो होता है जो जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, जरा उसमें एडवेंचर हो, इधर उधर जरा मुश्किल पेश आए। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें शुरू कर दी, अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया, तितर बितर हो गए। यानी पूरी तफसील किस्से आते हैं तफासीर में, लेकिन जहां भी किसी ने कोई बड़ा बोल बोला और नाशुक्री की, अल्लाह पाक ने उसको ख़त्म कर दिया। ये आपको नबियों के किस्सों में, कुरान में ये मिलेगा, और जो लोग कामयाब हो गए उनके किस्सों में मिलेगा कि वो लोग रात भर इबादत करते और सुबह को उठ के इस्तिग़फ़ार करते, वबिल असहारी यस्तग़फ़िरून, वो सदका देते और उनके दिल डरते रहते कि पता नहीं मेरा सदका कबूल हुआ कि नहीं। वो जिक्र करते हैं और उनके दिल अल्लाह से डर जाते हैं और बदन कांप उठते हैं, बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे मशायख बताते हैं कि ये अल्लाह वालों का हाल होता है कि वो हर वक्त नेक अमल करके भी डरते रहते, इस वजह से यानी कबूलियत के लिए नेक अमल करके डरते रहते। अल्लाह अकबर, परेशानी के मौके पर भी शुक्र करना। एक साहब के घर में चोर आ गया और सामान चुरा कर ले गया, तो उसने शिकायत की शेख से। बुजुर्ग ने फरमाया कि देखो इसमें भी तुम्हारे लिए अभी शुक्र करने का मौका है, क्या पता देखो शैतान अगर तुम्हारे दिल में आ जाता और तुम्हारा ईमान ही चुरा कर ले जाता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तो ऐसा नहीं हुआ तो शुक्र अदा करो, ईमान तो महफूज है। किसी के यहाँ चोरी हो गई तो उसने कहा कि तीन शुक्र मेरे ऊपर वाजिब हैं। एक ये है कि ये गुनाह का काम मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। दूसरा ये है कि सिर्फ दुनिया चुराई लेकिन आखिरत मेरे पास बाकी है। और तीसरा ये है कि सिर्फ आधी चीजें चुराई, बाकी आधी तो मेरे पास बाकी है। तो गिलास को ये नहीं कहते कि आधा खाली हो गया उस पर कंप्लेन, बल्कि जो बाकी है उस पर खूब शुक्र करें। जन्नत में एक ऐसा ग्रोह बुलाया जाएगा सबसे पहले मोमिनीन का, जो हर हाल में शुक्र करते थे, हर हाल में शुक्र करते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु लकल शुक्र। और दूसरी इबादतें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जन्नत में कोई नहीं कहेगा कि अब 5 मरतबा नमाज पढ़ो, हज को जाओ, रोज़ा रखो, लेकिन एक इबादत ऐसी है जो जन्नत में भी जारी रहेगी और वो इबादत है शुक्र की। जन्नती अल्लाह पाक का शुक्र हम्द बयान किया करेंगे, हम्द बयान किया करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। जन्नत में दाखिल होने के बाद जो उनका हाल होगा वो बयान किया गया कि वो खूब अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र के फायदे, शुक्र के फायदे क्या हैं? जो नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है अगर हम शुक्र करेंगे तो वो नेमत अल्लाह पाक बढ़ा देंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। इससे उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर आपको अल्लाह ने खूबसूरती दी, खूब शुक्र करें तो इंशाल्लाह खूबसूरती बढ़ा दी जाएगी। अगर अल्लाह ने इल्म दिया, माल दिया, खूब शुक्र करें, अल्लाह पाक उसमें बरकत देंगे। और ये एक रास्ता है कि आदमी ईमान पर खूब शुक्र करे तो इंशाल्लाह हुस्न खात्मा होगा और आखिर तक ईमान रहेगा, क्योंकि जिस नेमत पर शुक्र करेंगे अल्लाह पाक उसको बढ़ा देंगे। तो ईमान पर भी खूब शुक्र करें। दूसरा फायदा, हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि शुक्र से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह की मोहब्बत ही असल मकसूद असली है। यहाँ से दुनिया और आखरत के सारे काम बन जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। और तीसरा फायदा यह है कि अल्लाह के अजाब से हिफाजत होती है। फरमाया मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, ये 5वें पारे की आखिरी आयत का टुकड़ा है। अगर तुम मेरा शुक्र करते रहो तो मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हें अजाब दूँ। यानी आयत का एक प्यारा तर्जुमा फरमाया कि अगर तुम शुक्र करो तो मुझे क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हें अजाब दूँ। मालूम हुआ कि शुक्र करने वाले अल्लाह के अजाब से महफूज रहते हैं। अगर तुम ईमान पर हो, शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम शुक्र करो और ईमान है तुम्हारे पास तो मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दूँ। अगला फायदा यह है कि शुक्र से सब्र और तकवा पैदा होता है। जब ये मालूम हो गया कि अल्लाह पाक सबसे बड़े महबूब हैं तो अब कोई कंप्लेन नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी अल्लाह की किसी बात की, और कोई नाफरमानी नहीं होगी। और फायदा ये होता है कि आदमी के दिल से हसद निकल जाएगा, हिर्स और ग्रीड निकल जाएगी, और ज़रूरत से ज़्यादा फजूल खर्ची करना या रोक रोक कर रखना, ये सब बुरी बातें भी ख़त्म हो जाएंगी। जो है अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह की रजा में मुझे खर्च करना है। फिर आदमी का की तबीयत जिक्र में लगने लगेगी। जिक्र और शुक्र ये एक रास्ता है अल्लाह की मोहब्बत का। हाफिज इबन कय्यम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने फजाइल जिक्र में लिखा कि 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जिक्र के। उसमें से कुछ फ़ायदे बताए कि अल्लाह का जिक्र शैतान को दफा करता है, उसकी कुव्वत को तोड़ता है, अल्लाह की खुशी का सबब है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत इस्लाम की रूह और नजात का मदार है, दिल से रंज और गम को दूर करता है, दिल में खुशी और फरहत पैदा करता है, चेहरे और दिल को नूरानी करता है, आदमी के दिल को जिंदा करता है। अल्लाह का जिक्र एहसान के दर्जे तक ले जाता है, ऐसी इबादत नसीब होती है जैसे अल्लाह को देख रहा है। जब हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह पाक हमें याद फरमाएंगे। अल्लाह का जिक्र दिल और रूह का रिस्क है, दिल के लिए ऐसा है जैसे मछली के लिए पानी, और दिल को जंग से पाक करता है, गलत ख्वाहिशात और गफलत की सफाई करता है। जो अस्कार बंदा करता रहता है वो अर्श के चारों तरफ बंदे का जिक्र करते रहते हैं। जो आदमी खुशी में अल्लाह को याद रखे, अल्लाह पाक मुसीबत में उसको याद रखते हैं, फरिश्ते जिक्र करने वाले को घेर लेते हैं। ये बात हुई कि एक रास्ता है खूब शुक्र करे और जिक्र करे, चलते फिरते काम काज आते जाते मस्जिद दुकान जिक्र करना चाहिए। घर में खूब जिक्र किया गया, खाना पकाते वक्त जिक्र हुआ तो खाने में नूर होगा, कपड़े में नूर होगा। जब जिक्र को असली काम समझ लेंगे, अब जिक्र का मतलब है कि दिल ही दिल में कोई दुआ है, कोई तस्बीह है, कोई इस्तिग़फ़ार है, कोई ज़ोर ज़ोर से ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, आदमी मुतवज्जा हो गया अल्लाह की तरफ, अल्लाह का ध्यान है, कोई तस्बीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद शरीफ जो ज़बान पर जारी हो जाए। जब जिक्र को असली काम समझ लेंगे तो बेकार चीज़ों से दिल घबराएगा और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाएगा। हज़रत शेख डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल इस्लाम के शेख हैं, फरमाते थे कि सारी ज़िंदगी का नचोड़ और कीमिया बताता हूँ, खुलासा ग्रैंड समरी ऑफ लाइफ। ये उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअल्लिफ हैं हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरफी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने फरमाया, मैं तुमको सारी ज़िंदगी का नचोड़ और कीमिया बताता हूँ, जहाँ तक हो सके बुज़ुर्गों की दुआएं लो, बड़ी उम्र के लोगों का अदब करो और हर नेमत मौजूद पर शुक्र करो। इतना आसान नुस्खा बता दिया कि अपने बड़ों का अदब करो, उनकी दुआएं लो और अल्लाह ने जितनी नेमतें दी हैं उस पर खूब शुक्र करो। ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का खुलासा बता के जाता हूँ। हमारे बुजुर्ग इतनी लंबी लंबी तस्बीहात की जगह छोटे छोटे चुटकुले बता देते हैं जिससे आदमी की इस्लाह हो जाती है। तो खुलासा ये हुआ कि अपने मामूलात फ़राइज़ के अलावा, मुलाजमत और घर के काम उसके अलावा, कुछ नवाफिल तहज्जुद तस्बीह तिलावत जिक्र इस्तिग़फ़ार दिन के आगाज़ में दुआ की जाए, एक शेड्यूल बनाया जाए कामों का, अर्जेंट काम अहम काम पहले किए गए, फिर अपने नफ्स के साथ एक मुआहदा किया जाए, उसका हिसाब लिया जाए रोज़ाना शाम को, दिल में एक तकवा का मीटर लगा हुआ हो जो किसी बुराई की तरफ जाने न दे, शाम को इस्तिग़फ़ार किया किसी गलती पर और शुक्र किया आज की जितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, तो नियत कर लीजिए कि मुझे अपने वक्त को और ज़िंदगी को कीमती बनाना है, अल्लाह से तौफीक हिदायत बरकत और नुसरत मांगिए। आदमी का जहन हाजिर हो तो एक वक्त में कई काम कर सकता है। आदमी वॉक पर गया और तस्बीह और तिलावत साथ में करके आ गया, खाना भी पक रहा है जिक्र भी हो रहा है, आदमी ट्रेडमिल पर है वॉक कर रहा है और कुरान का एक जूज भी पढ़ लिया। ज़िंदगी मुख्तसर है, काम बहुत है, लेकिन आदमी की ज़बान और दिल तो हर वक्त फारिग है, उसको इस्तेमाल करें। जो लोग दावत के काम में लगे हुए होते हैं उनके घर पर जाके देखो तो सोफे पर, बिस्तर पर, चीज़ों पर प्लायर चीज़ें, कुरान सीडी टेप्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लिया कि ये चीज़ यहाँ भेजो, ये चीज़ यहाँ भेजो, ये किताब यहाँ भेजो, ऐसा भेजो, तो पूरे घर का नक्शा उसी के मुताबिक चलता। जिसने जिस काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया तो वो उसको वैसे ही लेकर चलता। हम जिक्र को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें और आदमी की असल खूबसूरती उसकी सीरत की खूबसूरती है, दिल में अल्लाह की अजमत, चेहरे और आँखों में हया, जबान नरम और हाथ पैर खिदमत में मशगूल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त का जिक्र, दुआ, सुन्नत तरीक़े, गुनाह एक एक करके छोड़ना, उसके लिए होती है इरादा और हिम्मत और किसी बुजुर्गों से ताल्लुक़, और जो चीज़ें आ जाएँ मुश्किलात परेशानियाँ उस पर सब्र और रिज़ा बिलक़ज़ा, और इसमें आखिरी बात यह है कि मखलूक से कोई उम्मीद ना रखना। इंडिया में बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, दारुल उलूम देवबंद के मोहतमम और सरपरस्त मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बयान में फरमाया कि किसी मखलूक से कोई तवक्को नहीं रखना, آخر میں فرمایا کہ مجھ سے بھی کوئی توقع نہیں رکھنا، کوئی ہوپ نہیں رکھنا، کسی مخلوق سے کوئی توقع نہیں رکھنا. پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ ہر دن، ہر کام، ہر نئے موقع، ہر حالت پر جس چیز سے بھی واسطہ پڑے اس کی خیر مانگیے، ہر چیز کی خیر مانگیے. اس کی تفصیل ہے کہ آدمی سوچے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ صرف آپ کا کرم اور فضل ہے، اور یہ جو کام آیا ہے اس کو کرنے کے لیے جو علم اور طاقت اور سلیقہ چاہیے وہ مجھ میں ہے نہیں، تو اے اللہ اپنے فضل اور احسان سے اس کام میں صدق اور اخلاص ڈال دیجئے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور اس کام میں جو دین اور دنیا کی خیر برکت اور رحمت ہے سب مجھے عطا فرما دیجئے، اور اس کام میں جتنے شر اور فتنے اور خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ سب مجھ سے ہٹا دیجئے، اور اس کام کو اپنی رحمت سے قبول فرما کے فلاح دائرین کا ذریعہ بنا دیجئے، اس میں اونچی اونچی نیتیں عطا فرما دیجئے، اور شیطان اور نفس کو اس کے پاس سے ہٹا دیجئے. ہر کام میں، ہر کام میں یہ نیتیں کریں، ڈرتے ڈرتے مانگتے ہوئے چلیں، دین دنیا کے ہر کام میں اللہ سے مانگ رہا ہے. اب بعض لوگوں کے پاس کام بہت زیادہ آتے ہیں، بہت مشغولیت ہے اور بھی کام آ گئے، تو سوچنا چاہیے کہ جس درخت پر پھل فروٹ زیادہ ہوتے ہیں بچے وہیں پتھر مارتے ہیں. دو آدمی ہیں، ایک آدمی بیکار ہے کوئی کام نہیں کرتا، ایک آدمی بہت کام کا ہے بھاگ بھاگ کے کام کرتا ہے، تو لوگ اب جو نیا کام لائیں گے وہ بیکار آدمی کے پاس نہیں جائیں گے، وہ اس کام والے کے پاس جائیں گے کہ تم یہ دو کام اور کر دو. تو جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملتی، اور جو ایمان اور عمل صالح میں کوشش کرے گا شیطان اسی کو بیٹھائے. تو قصہ یہ ہے کہ کاموں کا آنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، خوب اس کو لیا جائے اور اللہ سے مانگ مانگ کر کے چلا جائے. اب بات شکر کی ہو رہی تھی، ایک ہے شکر زبان سے، ذکر سے، اور ایک ہے شکر سر سے پیر تک اللہ کی اطاعت. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا خوف دل میں رکھیے تاکہ آپ شکر گزار بن جائیے. آنکھوں کا شکر کہ کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا، زبان کا شکر کہ کوئی غیبت، کوئی بری بات نہیں کہنا، کوئی لقمہ حرام کا نہیں کھانا، کان کا شکر کہ کوئی موسیقی، کوئی ایسی چیز نہیں سننا، کسی کی غیبت نہیں سننا، سر سے لے کے پیر تک دل کا شکر کہ اللہ کے علاوہ دل میں اور کسی کا خیال نہ ہو، سر سے پیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقویٰ، یہ آ جائے زندگی میں، یہ آ جائے زندگی میں. اور پریشانیاں اونچ نیچ آتی رہتی ہیں، اس میں حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے جو عصائے موسیٰ کی طرح دنیا کی تمام فکروں کو ہڑپ کر جاتا ہے. یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، کہتے ہیں ایک پریشانی لگ جائے آخرت کی تو ساری دوسری پریشانیوں کو وہ عصائے موسیٰ کی طرح ہڑپ کر جاتا ہے، سب بھول گیا، آخرت کی پریشانی میں لگ گیا. صبر کا میدان تمام مصیبتوں اور ناخوشگوار باتوں کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، یہ دعا ہے. اور دعا کی کثرت، چیز ملے یا نہ ملے، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، دعا خوب مانگے تو اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اطمینان قلب ملے گا. دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. گھروں کے معاملات میں شکر، اس کی مثال بیان کی جاتی ہے. ایک باغ میں ایک ملازم تھے، دیکھ بھال کرتے تھے فروٹ کی. باغ کا مالک آ گیا اور اس نے ہمدردی میں ایک پھل توڑا، ایک فروٹ اور ایک حصہ کاٹ کر اپنے نوکر کو کھلایا. نوکر نے کہا ماشاء اللہ، الحمد للہ، بہت اچھا ہے، کتنا اچھا آپ نے مجھے کھلایا، بہت خوش ہوا، شکریہ ادا کیا. مالک ایک اور پھل توڑ کر لایا، اس کی بھی ایک، اس کو کاٹا ایک حصہ اور اس نے نوکر کو کھلایا. نوکر بہت خوش ہوا، الحمد للہ، ماشاء اللہ، آپ کا شکر، آپ نے کتنا اچھا کھلایا. مالک نے ایک ٹکڑا اس پھل کا کاٹ کے اپنے منہ میں رکھا تو دیکھا کہ نہایت ہی کڑوا اور بدبودار الگ سا پھل ہے. اس نے دیکھا کہ نہایت ہی کڑوا پھل ہے، یعنی اس کی آنکھ میں تو آنسو آ گئے مالک کے. تو اس نے کہا نوکر سے کہ یہ اتنا کڑوا پھل میں نے تجھ کو کھلایا اور تو نے کمپلین کیوں نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں کہ یہ کڑوا پھل ہے، کھاتا چلا گیا خوشی میں. تو اس نے کہا کہ میرے مالک، آپ مجھ کو زندگی بھر کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، اگر ایک دن ایک کڑوا پھل کھلا دیا تو کیا خطے ہو، کیا غلطی ہو. اس طرح ہمیں اپنے گھروں کے مسائل اور چیزوں کو حل کر لینا چاہیے کہ اگر زندگی بھر نعمتیں نعمتیں مل رہی ہیں، اگر ایک دن اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے کیا فرق پڑتا. معافی تلافی. مسافر سفر پر جا رہا تھا، ہائی وے پہ ایگزٹ لیا اس نے، ہوٹل میں گیا، भैया तुम्हारे पास कमरा है रात के लिए? होटल वाले ने कहा कोई कमरा नहीं, सॉरी। दूसरे होटल में गया, भैया तुम्हारे पास एक कमरा खाली है? उन्होंने कहा कोई कमरा खाली नहीं, सॉरी, नो वैकेंसी। अब मुसाफिर परेशान फिर मैनेजर के पास गया कि भाई कुछ तो होगा, इंतजाम कर दो, मैं रात गुजारनी। तो मैनेजर ने कहा अच्छा भाई, मैं ये कर सकता हूँ कि एक टूटी हुई चारपाई तुम्हारे लिए छत पर डलवा दूं, कहो तो। तो मुसाफिर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि भाई मुझको और क्या चाहिए, वो रात ही तो गुजारनी। तो पूरी दुनिया की 70 साल की जिंदगी का यही हाल। ट्रेन स्टेशन पर 3 मिनट को ट्रेन रुकी तो भागे चाय लेने को, चाय वाला खड़ा था अपनी बाल्टी लेकर, अरे भाई चाय दे जल्दी, ट्रेन छूट रही है। अब उस चाय में चीनी है कि नहीं, दूध है कि नहीं, गर्म है ठंडी है, भाई कुछ भी दे दे, मेरी तो ट्रेन छूट रही। जैसे किसी के जहाज में बोर्डिंग हो रही हो, आखिरी मिनट में वो लेने जाए कोई चाय वगैरह, अरे भाई कुछ भी दे दे, चाय में दूध है चीनी है नहीं है, दे दे, मेरा तो जहाज जा रहा है। तो पूरी दुनिया की 70 साल की जिंदगी का यही हाल है। अफ्रीका में एक आदमी को जमात में जाना था, जमात वालों ने आगे कहा भैया अपना बैग दे दो, हम उठा के ले चलें। उसने कहा मेरे पास बैग ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई क्या सबूत है तुम आओगे, ऐसा करो अपना एक जोड़ा कपड़े का ही दे दो। उसने कहा मेरे पास कपड़े का जोड़ा ही नहीं है, जो पहना हुआ यही है बस। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसे ही चलो, लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ तो ले लो अपने साथ। तो उसने अपने कहीं से वो बार्ले के और जौ के कुछ दाने लाया, बार्ले के कुछ ग्रेन्स लेकर आया, दो पत्थर उठाए उसने और उसके ऊपर उसने रगड़कर उसका आटा बनाया, आटा तैयार किया पीस के। अब उसको रखने के लिए ना उसके पास कोई कप है, ना बर्तन है, ना प्लास्टिक है, ना बैग है। अपने हाथ में उठाए हुए वो आटा वो बेचारा अल्लाह के रास्ते में चला गया, हाथ में उठाए हुए अल्लाह के रास्ते में चला गया। एक बच्ची को इस्लाम का शौक पैदा हुआ, उन्होंने कलमा पढ़ा। मुसल्ला कोई नहीं, एक प्लास्टिक का जैसे योगा वगैरह का मैट होता है वो बिछाया गया, ऐसे नमाज पढ़ते। उस वक्त कोई चीज़ मौजूद नहीं, तो उन्होंने अपना जो स्कार्फ होता है सर्दी का अपने सर पर लपेटा और रुकू सजदा सीखना शुरू किया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फिर ऐसे नमाज पढ़ते। हिस्सा यह है कि जिसके पास जो चीज़ है बस उसी से काम चलाओ और अल्लाह अल्लाह के करीब पहुंच जाओ। शकीक बल्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने देखा कि एक अपाहज आदमी हैंडीकैप जमीन पर घिसटता हुआ चला जा रहा है एक एक इंच करके, और डायरेक्शन है उसकी जा रहा है मक्का मुकर्रमा की तरफ। तो उन्होंने पूछा कि भैया कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा कि मैं समरकंद से आ रहा हूँ, सेंट्रल एशिया से आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई ये इंच इंच करके एक एक तुम घिसटते हुए चले जा रहे हो, ना हाथ है ना पैर है, तो कब से ये तुम्हारा ये सफर चल रहा है? तो उसने कहा 10 साल से मैं ये सफर कर रहा हूँ, 10 साल से मक्का मुकरमा की तरफ एक एक इंच करके घिसटता हुआ चला जा रहा है, जिस फ्लाइट। फिर उसने कहा कि ए शकीक तुम मेरे ऊपर ताज्जुब करते हो, मेरा मालिक मुझको उठाए लिए जा रहा है, मेरा मालिक मुझको उठाए लिए जा रहा है। फिर उसने कहा कि ए अल्लाह मैं आपको की ज्यारत को आ रहा हूँ और जो फासला है वो बहुत लंबा है, लेकिन मेरा फासला जो है वो बहुत लंबा है, लेकिन शौक वो मुझको मदद करेगा, शौक मुझको उठाए लिए जा रहा है। तो ये दुनिया की जिंदगी की कहानी है और उसके अंदर आदमी को हमें भी रहना है, आपको भी रहना है और मेहनत करना है। क्या आप चाहते हैं कि हमेशा जवान और हमेशा खुश और हमेशा तंदुरुस्त रहें? सब आदमी चाहते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा है नहीं, मुमकिन नहीं है। ये तो जन्नत में होगा, ये जन्नत में होगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया काम करने की जगह है और आखरत में क्या होगा, कब्र में आराम मिल जाएगा, रेस्ट और नींद पूरी हो गई कब्र में, और नाश्ता मिलेगा अर्श के साए में, और हौजे कौसर का पानी पिए और जन्नत में जाके वहाँ की रोटी खाई इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें आपको सबको जन्नत अता फरमा दे। जन्नत के दो दरवाजों के दरमियान 70 साल का फासला और एक दरवाजे के दो पट के दरमियान 40 साल का फासला की मुख्तलिफ रवायतें हैं, अहादीस हैं। जन्नत की खुशबू 40 साल के फासले से महसूस होती है, बाद रवायतों में 70 साल और उससे भी ज्यादा का जिक्र आया। पहला ग्रोह जो जन्नतियों का दाखिल होगा चौदहवीं के चांद की तरह उनके चेहरे चमक रहे होंगे। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की तरह की लंबाई दी जाएगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह की खूबसूरती दी जाएगी मर्दों को, और औरतों को ऐसी खूबसूरती दी जाएगी कि अगर कोई दुनिया की तरफ झांक भी ले तो पूरी दुनिया नूर और खुशबू से भर जाए। अगर जन्नत की औरतों में से कोई दुनिया की तरफ झांक ले तो पूरी दुनिया नूर और खुशबू से भर जाए, ज़मीन से आसमान तक, और उनके सर का दुपट्टा और उनका हिजाब वो दुनिया और जो कुछ है उससे ज़्यादा कीमती है। जो ऊंचे मर्तबे वाले जन्नती होंगे उनको ऐसा दिखाई देगा जैसा चमकदार सितारा है, ये एक और जन्नत है, एक और जन्नत है। जन्नत में एक खेमा, एक टेंट मोतियों को तराश कर बनाया गया, एक मोती 60 मील लंबा उसको काट कर खेमा बनाया गया, ऐसी जन्नत। हौज़े कौसर, उसका पानी दूध से ज्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठा। जन्नत में इतने बड़े बड़े दरख्त कि एक उनका साया 100 साल में भी तय न हो। जन्नत के फल दूध से ज्यादा सफ़ेद, शहद से ज्यादा मीठे और मक्खन से ज्यादा नरम। हमेशा जवान, हमेशा खुश और हमेशा सेहतमंद। हजारों साल जन्नत के बाग में तफरी करे और हजारों साल जन्नत के महल में मज़े हुए। ना कोई वहाँ बदबू है, ना धुआं है, ना पकाने की ज़रूरत, ना रेस्ट रूम जाने की ज़रूरत। जन्नत में हर चीज़ जो मांगेंगे वो मिलेगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। जन्नत में जन्नती एक एक वक्त में 70-70 जोड़े पहना करेंगे, नूर के जोड़े। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह पाक का दीदार। अल्लाह ताला अपने फजल से, एहसान से हमें आपको सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे और हमें हर नेमत पर शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़कर अपने लिए, उम्मत के लिए दुआ मांग लीजिए, सबके लिए दुआ मांग लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم اهد الناس جميعا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا الله يا رحمن يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دلوں میں جو حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اے اللہ غیب سے پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے کاموں میں وقت میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ شیطان اور نفس سے حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے ہر کام میں صدق اور اخلاص ڈال دیجیے، اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے، اے اللہ اپنی نعمتوں میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا جو بہترین طریقہ ہے، پاک صاف سنتوں والا طریقہ جس سے ہم آپ کے محبوب بندے بن جائیں، اے اللہ ہمیں سکھا دیجئے، اس کا علم دے دیجئے، اس کا طریقہ دے دیجئے، اس پر استقامت دے دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور شکر کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ اچھی نیتیں، دعائیں، سنتیں جاری فرما دیجئے، اے اللہ تمام مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے، حادثات سے ہمیں، گھر والوں کو، محلوں کو، ساری امت کو محفوظ رکھیے، اے اللہ حاسدوں سے، دشمنوں سے محفوظ رکھیے، اے اللہ خوف، ڈر اور وہم اور وسوسوں سے محفوظ رکھیے، اے اللہ گھروں میں جو بچے ہیں، اے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہر گھر میں حافظ اور عالم عطا فرما دیجئے، دین کی خدمت کرنے والے، والدین کی خدمت کرنے والے بنا دیجئے، اے اللہ بہترین زندگی، بہترین خاتمہ عطا فرمائیے، اے اللہ جن جن گھروں میں جو احوال ہیں، جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ بیماری پریشانی کو دور فرمائیے، اے اللہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اے اللہ آپ کی جتنی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں مساجد میں، خانہ کعبہ میں، حرمین شریفین میں، जुमे में, रमदान में, हज में, ऐ अल्लाह जहाँ जहाँ आपकी रहमतें उतरती हैं, ऐ अल्लाह हम सब मोहताज हैं, हमें भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमें अपने ख़ानदानों में, पड़ोसियों में, शहरों में दीन फैलाने का ज़रिया अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दीन के आवान और अमसार, दीन के काम करने वाले, खिदमत वाले, ऐ अल्लाह हमें भी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह आगे पीछे दाएं बाएं से, हर फितने से, मुश्किल से, परेशानी से बचा दीजिए। ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में जो मखलूक दुआएं कर रही है, ऐ अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात सालिहीन सालिहात जहाँ जहाँ दुआएं कर रहे हैं, जो लोग दुआ करके जा चुके, जो आइंदा क़यामत तक दुआएं करेंगे, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से भी उन दुआओं में कबूल फरमा दीजिए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने दुआ की दरख्वास्त की है, ऐ अल्लाह उनके दिलों में हाजात हैं, ऐ अल्लाह उनको पूरा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारे जिन घर में ये हलका होता है, उनके ख़ानदान में बुज़ुर्ग बीमार हैं, दिल का दौरा अस्पताल में है, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से उनको सेहत कामला, शिफाए कामला अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उम्मत में जो जो लोग बीमार हैं, सेहत कामला, शिफाए कामला अता फरमा दीजिए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.